समर्पण दिवंगत बाबू पूज्य पिताश्री की स्मृति को जिनसे मुझे धर्म और भक्ति पर लिखने की यह समझ मिली। तृतीय संस्करण की भूमिका। पुस्तक का तीसरा संस्करण पाठकों के हाथ में है। इस तीसरे संस्करण का होना इस बात का प्रमाण है कि पाठकों ने पुस्तक को अपने मन के अनुकूल पाया है और उन्हें पुस्तक में लिखे हुए पर भरोसा है। इस नए संस्करण में 4 नए निबंध जोड़े गए हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित नया निबंध भक्ति आंदोलन को एक नए कोण से देखने के नाते नए और महत्वपूर्ण निष्कर्षों को लेकर आया है। पाठक इसे विचारोत्तेजक पाएंगे। कबीर से संबंधित निबंध में कबीर पर भी नए कोण से विचार किया गया है, कुछ नई स्थापनाओं के साथ। भक्ति काव्य और मानुष सत्य में इस बात का प्रतिपादन है कि अलग अलग सोच के बावजूद बुनियादी तौर पर सारे भक्त का मानवतावादी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित निबंध में पद्मावत से जुड़े सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। बातें संक्षेप में कही गई हैं, परंतु उन्हें आधार बनाकर लंबी चर्चा की जा सकती है। कुल मिलाकर प्रयास यही है कि प्रबुद्ध पाठकों के ज्ञान के क्षितिज विस्तृत हों और वे नए कोण से नई स्थापनाओं के साथ संत भक्त कविता के महत्व को आंक सकें। धन्यवाद। वल्लभ विद्यानगर, शिव कुमार मिश्र, 30/8/2000। प्रथम संस्करण की भूमिका। इस किताब का संबंध भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य से है और ये दोनों ही मेरे अध्ययन के मुख्य विषय कभी नहीं रहे। इनके बारे में विशेषता का दावा तो दूर, शायद इनसे संबंध रखने वाली कुछ मोटी बातों से भी मेरा अपरिचय या अर्ध परिचय हो। ऐसी स्थिति में इस किताब को सामने लाने में मेरा मकसद क्या हो सकता है, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। बात यह है कि विशेषज्ञता या मेरे अध्ययन के मुख्य केंद्र में न होते हुए भी भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य से अनेक कारणवश मैं सदा से ही बड़ी आत्मीयता अनुभव करता रहा हूँ। यह आत्मीयता घर तथा परिवार के वातावरण के बिल्कुल भी धार्मिक न होने के बावजूद लंबे काल से न केवल बनी रही है, विकसित भी होती रही है। भक्ति तथा धर्म में के कोई भी संस्कार मुझे माता पिता या परिवार से नहीं मिले, परंतु जब जब भक्ति काव्य को पढ़ा वह मन में कहीं भीतर उतरता गया है। माता पिता बराबर आंखों के सामने आ गए हैं। मार्क्सवाद ने मुझे भक्ति के इस काव्य को देखने की नई दृष्टि दी और सच पूछा जाए तो भक्ति काव्य के प्रति मेरी अपनी आत्मीयता जिन आयामों पर है उसे बरकरार रखने में और उसे विकसित करने में मार्क्सवादी दृष्टि का ही प्रधान योग है। संभव है और संभव क्या यह सही है कि भक्ति काव्य को भजन पूजन के स्तर पर ग्रहण करने वाले उसके प्रशंसकों की ही तादाद अधिक है, परंतु इस स्तर पर भक्ति काव्य को मैं कभी ग्रहण नहीं कर पाया। भक्ति काव्य को मैंने ग्रहण किया उस स्तर पर जिसकी या तो घोर भौतिकता में डूबे उसके भजन पूजन वादी प्रशंसक चर्चा नहीं करते या औपचारिकता वश चर्चा करते भी हैं तो वह उन्हें अपने ऊपर ही व्यंग्य मालूम देती है। मार्क्सवादी दृष्टि ने मुझे भक्ति काव्य को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि दी और फलस्वरूप उसके जो शक्तिशाली आयाम मेरे सामने उभरे वे आज भी ज्यों के त्यों बरकरार हैं, वरन उनकी मिसाल भी नहीं है। मसलन लोक जीवन की पहचान, लोक मानस, लोक हृदय या जिसे लोक चित्त कहते हैं उसकी परख और उसे पूरी जीवंतता से उद्घाटित कर पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भक्ति के इन कवियों को हासिल हुई और जिसे आज भी हम अप्रतिम मान सकते हैं। हम लोक संस्कृत की बात करते हैं, भक्त कवि उसे हमारे सामने मूर्त करते हैं। हम लोक जीवन के यथार्थ लोक के कष्ट पीड़ा और दुख दर्द हर्ष उल्लास की अभिव्यक्ति में सच्चे मानवीय साहित्य की पहचान को पहचान कर मानते हैं और भक्ति काव्य हमें उसकी वानगी देता है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि समूचे भक्ति आंदोलन के मूल में जनता के दुख दर्द ही हैं और उन दुख दर्दों को बड़ी जीवंत मानवीयता के साथ उभारने उनसे एकमेक होकर सामने आने में ही भक्ति आंदोलन की शक्ति को देखा जा सकता है। अनुमान कर सकते हैं कि 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अपने पूरे वेग के साथ गतिशील होने वाले इस भक्ति आंदोलन में जनता के ये दुख दर्द कितनी गहरी संवेदनशीलता के सानिध्य में उभरे होंगे। हम इस आयाम पर भक्ति के आंदोलन तथा उसकी प्रेरणा में रचित काव्य से सीख ले सकते हैं। आज हम आस्था की बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं, अकुंठ मानव चेतना की बात करते हैं और अपने परिवेश में उसे न पाकर निराश और विक्षुब्ध होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हुए छोटी से छोटी बातों पर, छोटे छोटे प्रलोभनों पर हम बिक जाते हैं। व्यवस्था हमें सरलता से खरीद लेती है, हम व्यवस्था के ढोल बन जाते हैं। फिर मुक्तिबोध को उद्धृत करूं तो लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी हमें रावण के घरों में पानी भरने को विवश कर देती है। अनुकूल परिवेश कबीर का भी नहीं था और सूर तुलसी का भी नहीं था। इस अर्थ में कि व्यवस्था उनके समय में बहुत मीठी बनकर लोगों पर अपने नागपाश फेंक रही थी, किंतु क्या बात है कि कबीर अपना घर फूंक कर सरे बाजार खड़ा हो जाता है और दूसरों को भी आमंत्रित करता है। क्या बात है कि सूर और तुलसी उस व्यवस्था के नागपाश को झटक कर अलग कर देते हैं, किसी देहधारी की प्रशस्ति को लानत मानते हैं, बड़े से बड़े के समक्ष भी नत नहीं होते और नत होते हैं तो एक अपने राम के समक्ष, अपने आराध्य के समक्ष ही, बाकी सबको उनकी औकात बता देते हैं। यह आस्था, यह आत्मसम्मान, ऐसी अस्मिता आज कहाँ दिखाई दे रही है? सच पूछा जाए तो लोक जीवन की गहराइयों में उतरा कब जन से एकात्म हुआ व्यक्ति ही ऐसी आस्था पा सकता है और जन के साथ इस एकात्म के बूते ही ये अपने आराध्य से इतना एकात्म हो सके हैं, इतना निडर हो सके हैं कि बड़ी से बड़ी भौतिक सत्ता इन्हें क्षुद्र दिखाई दी है। ये रचनाकार इसी नाते अकुंठित भी रह गए हैं, सके हैं। जब शीश काट कर जमीन पर रख दिया, अहं को विसर्जित कर जन के साथ एकाकार हो गए, तब फिर कुंठा कहाँ और घुटन कहाँ, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। कहाँ है इस प्रकार का माहौल आज, जब घर जोड़ने की माया सब जगह हावी हो रही है तो घर फूंकने की बात कौन करेगा? ये रचनाकार कर सके इस नाते आज भी हमारे लिए वरेण्य है। फिर ये वैरागी भी नहीं थे, कबीर जीवन भर गृहस्थ रहे। सूर ने जिस श्रृंगार का गायन किया, तुलसी ने ठेठ जीवन के भीतर से जिस भक्ति का रास्ता निकाला, उसे देखते हुए उन्हें वैरागी कहना कदापि संगत नहीं होगा। ये जीवन की ये बात स्वीकृत के जिंदगी की ठेठ सच्चाई को प्रतिपादित करने वाले कवि हैं। इन जैसा जीवन प्रेम, इन जैसा खुला आचरण भी हमारे लिए प्रेरणा का अजस्र स्रोत है। कहने का मतलब यह कि अपनी इन तमाम बातों के नाते भक्ति काव्य में मेरी रुचि बराबर बनी रही है और बढ़ती रही है। भक्ति कविता की लोक धर्मिता हमारे लिए स्पृहा की वस्तु है, सीखने की वस्तु है। भक्ति काव्य में उनके रचनाकारों में अंतर विरोध भी है, उसकी सीमाएं भी हैं। हम उनकी ओर से सजग रहना चाहते हैं। किताब में उनकी चर्चा भी की गई है। हम भक्ति काव्य जैसा काव्य आज नहीं चाहते, पर जिन मूलवर्ती गुणों के कारण भक्ति कविता कालजयी हुई, वे गुण जरूर उसे लेना चाहते हैं और इन गुणों के नाते ही हम उसे सांस लेकर चलना भी चाहते हैं। आज जरूरत है भक्ति के इन रचनाकारों को उस दुष्चक्र के दायरे से खींच लाने की, जो भजन पूजनवादी लोगों ने उसके चारों ओर फैला रखा है। हमें उनके दुरुपयोग के खिलाफ एकजुट होकर काम करना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बड़े स्तर पर यह कार्य किया है, हमें उनके कार्य को आगे बढ़ाए रखना है। तमाम सारी एकेडमिक चर्चा से बचकर इन निबंधों में मैंने भक्ति आंदोलन तथा उसके साथ सामने आने वाले रचनाकारों की लोकधर्मी चेतना को, उनके आत्मसम्मान से दीप्त व्यक्तित्व को, उनकी अकुंठित मनुष्यता को उभारने की कोशिश की है। लोक जीवन तथा लोक संस्कृति से इन रचनाकारों का जो लगाव है, उसे रेखांकित करने की चेष्टा की है। लोक भाषाओं में लिखे गए इस सारे काव्य में हमारे साधारण जन की जिंदगी जिस रूप में प्रतिबिंबित हुई है, उसके स्वप्न, उसके सुख दुख, उसकी आशाएं आकांक्षाएं जिस रूप में उभर सकी हैं, मैंने भले ही संक्षेप में उसे पहचाना और परखना चाहा है, इससे अधिक इस किताब में और कुछ न पढ़ा जाए, यह मेरी गुजारिश है। तमाम सारे विषय इसमें छूट गए हैं, परंपरित प्रकार की बहुत सी चर्चाएं नहीं हो पाई हैं, इसे मेरी दृष्टि की सीमा माना जाए, मेरी उनके प्रति अरुचि माना जाए। इन कवियों के काव्य सौंदर्य पर जरूर अलग से लिखने की इच्छा है, वह कभी पूरी करूंगा। इनके काव्य की शास्त्रीय चर्चा में भी न मेरी रुचि है और न दखल, उसे तो शास्त्र निपुण व्यक्ति ही कर रहे हैं। यह किताब भी किताब के रूप में नहीं लिखी गई, इस कारण निबंधों में पुनरुक्ति भी मिल सकती है। अलग अलग समय में लिखे गए निबंध ही मिलजुल कर यह किताब बना रहे हैं। इनमें से कबीर सूर तथा भक्ति आंदोलन के दूसरे निबंध प्रकाशित भी हो चुके हैं। यहाँ वे कुछ संशोधित परिवर्धित रूप में फिर से प्रकाशित हो रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी तुलसी भक्ति आंदोलन का पहला निबंध अप्रकाशित है, वे यहाँ पहली बार ही प्रकाशित हो रहे हैं। नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह पर लिखे निबंध भी अप्रकाशित हैं। ये विशेष अवसर के लिए लिखे गए निबंध थे, किंतु किताब के विषय की सीमा में आ सकने के नाते उन्हें भी समेट लिया गया है। भक्ति आंदोलन संबंधी निबंधों में प्रमुखतः के दामोदरन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा गजानन माधव मुक्तिबोध के विचारों को ही रेखांकित किया गया है। मेरी अपनी टिप्पणियां जरूर हैं। किताब के संदर्भ में, किताब के निबंधों में बहुत गहरी बातों की चर्चा की अपेक्षा रखने वालों को निराश न होना पड़े, इस नाते यह भूमिका जरूरी थी। आलोचना दस्तावेज नई कहानियां पत्रिकाओं का आभार मानता हूँ, जिनमें कबीर सुर तथा भक्ति आंदोलन के दूसरे निबंध प्रकाशित हुए हैं। अंत में भक्ति आंदोलन के तेजस्वी आचार्यों तथा रचनाकारों को प्रणाम करता हुआ मैं पुस्तक पाठकों के समक्ष रख रहा हूँ। पाठक तथा विद्वान उसकी कमियों से, विशेषतः तथ्यमूलक भूलों से अवगत कराएं तो विशेष प्रसन्नता होगी। फिलहाल इतना ही। वल्लभ विद्यानगर, गुजरात, 17 दिसंबर 1982, शिव कुमार मिश्र।